आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 9 रियासतों में गवर्नरों की तकरीरी की है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का नया गवर्नर, जबकि संतोष गंगवार को झारखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों के लिए जबरदस्त मांग की वजह से साल 2030 तक मुल्क में स्टील की पैदावार 300 मिलियन टन को पार कर जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के मर्दों की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 2-3 गोल से शिकस्त दी, जबकि बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के मुकाबले में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को हराया। और क्रिकेट में पल्ले केले के मकाम पर 3 मैचों की T20 बैन अलाकवामी सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 43 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 112वां नशरिया होगा। जनाब मोदी के लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये दूसरा प्रोग्राम भी होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर होगा। आकाशवाणी ये प्रोग्राम हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ रियासतों में नए गवर्नरों की तकरीरी की है। महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का गवर्नर, त्रिपुरा के साबिक नायब वजीर आला जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर, राजस्थान से साबिक राज्यसभा रुकन ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर, साबिक मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का गवर्नर, आसाम से साबिक लोकसभा एमपी रमन डेका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर, कर्नाटक के साबिक वजीर सीएच विजयशंकर को मेघालय का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। सीपी राधाकृष्णन, जो कि फिलहाल झारखंड के गवर्नर हैं, उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह गुलाब चंद कटारिया, जो कि आसाम के मौजूदा गवर्नर हैं, उन्हें पंजाब का गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है। सिक्किम के मौजूदा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा उन्हें मणिपुर के गवर्नर का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। साबिक आईएएस ऑफिसर के कैलाश नाथन को पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 हर भारतीय की ख्वाहिश और आरजू है। कल नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नवी मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि रियासतें इस मकसद को हासिल करने में अहम रोल अदा कर सकती हैं, क्योंकि वो आवाम से बराह रास्त जुड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत एक्ट 2047 के ख्वाब को तमाम रियासतों की मुश्तरका कोशिशों से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता रियासतें तरक्की याफ्ता भारत बनाएंगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत नौजवानों की कसीर आबादी वाला मुल्क है। यह अपनी अफरादी कुव्वत के सबब पूरी दुनिया के लिए एक पुरकशिश मकाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए महारत, तहकीक और इख्तिरा पर जोर, नीज रोजगार पर मबनी मालूमात जरूरी है। बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला की एक मीटिंग कल शाम नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा, वज़ीर दाखला अमित शाह और बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। जनाब मोदी ने वज़राए आला और नायब वज़राए आला के साथ वसी तर मामलात पर तबादला ख्याल किया। लोकसभा इंतखाबात और मरकजी बजट के पेश किए जाने के कुछ दिन बाद यह मीटिंग मुनाकिद हुई। यह मीटिंग वक्फे वक्फे से बाकायदगी के साथ मुनाकिद होती रहती है। इस मीटिंग का मकसद रियासतों में अहम स्कीमों और मरकजी हुकूमत की फलाही इकदाम की फराहमी का जायजा लेना था। ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے بی جے پی کے وزرائے اعلی اور نائب وزرائے اعلی کے ساتھ میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ پارٹی مزید بہتر حکمرانی اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. حکومت کے بنیادی ڈھانچہ پروجیکٹوں کے لیے زبردست مانگ کی وجہ سے ملک میں اسٹیل کی پیداوار سال 2030 تک 300 ملین ٹن پار کر جانے کا امکان ہے. نئی دلی میں بھارت چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیل کے سیکرٹری ناگیندر ناتھ سنہا نے کہا کہ حکومت کے بنیادی ڈھانچہ پروجیکٹوں کے سبب اسٹیل کی موجودہ مانگ کافی زیادہ ہے اور اس میں تقریباً 10% کے اضافے کا امکان ہے. جناب سنہا نے مزید کہا کہ مضبوط جی ڈی پی کی شرح نمو نیز سرکاری اور نجی دونوں سیکٹروں کی جانب سے بنیادی ڈھانچے پر مسلسل زور کے دوران اسٹیل کی مانگ زیادہ رہے گی. انکم ٹیکس محکمہ نے کہا ہے کہ موجودہ جائزہ سال کے لیے 5 کروڑ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹرنز داخل کیے گئے ہیں. پچھلے سال کے مقابلے اس میں 8% کا اضافہ ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انکم ٹیکس محکمہ نے کہا ہے کہ اسے صرف کل 28 لاکھ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹرنز موصول ہوئے ہیں. دلی میں اولڈ راجیندر نگر کے ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے بیسمنٹ میں شدید بارش کے سبب پانی بھر گیا جس میں 3 طلبہ کی موت ہو گئی. پولیس نے بتایا کہ بیسمنٹ میں پھنسے ہوئے کچھ طلبہ کو نکال لیا گیا ہے جن میں سے 3 کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. پولیس نے ایک فوجداری مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس سے وابستہ 2 افراد کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے. دلی حکومت نے اس معاملے میں مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیا ہے. طلبہ نے کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے باہر مظاہرہ کیا. دلی میں بی جے پی کے سربراہ ویریندر سچدیوا نے آپ سرکار کی نکتہ چینی کی ہے اور چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر جاپان کے 2 روزہ دورے پر آج صبح ٹوکیو پہنچ گئے ہیں. جاپان میں بھارت کے سفیر سی بی جارج نے ہوائی اڈے پر وزیر موصوف کا خیر مقدم کیا. اپنی جاپانی ہم منصب محترمہ یوکو کامیکاوا کی دعوت پر ڈاکٹر جے شنکر کل ہونے والی کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جاپان کا دورہ کر رہے ہیں. میٹنگ کے دوران بھارت، جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ پچھلے سال ستمبر میں امریکہ میں منعقدہ آخری میٹنگ کے دوران ہوئی بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں ترقی کے معاملے پر تبادلے خیال کریں گے. نیز کواڈ کے ذریعے کیے گئے اقدامات کی پیش رفت اور ورکنگ گروپ کا جائزہ لیں گے. جناب جے شنکر علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلے خیال کریں گے. مشرقی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل راجیش پینڈھرکر نے کل آئی این ایس کرنج کا دورہ کیا. آئی این ایس کرنج بھارتی بحریہ میں اسکارپین کلاس کی 3ری آبدوز ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ جناب پینڈھرکر نے بھارتی بحریہ نے کہا کہ جناب پینڈھرکر نے مشرقی ساحل پر کامیابی کے ساتھ عملے کی تعیناتی کے بعد ان سے بات چیت کی. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں عالمی میراث سے متعلق کمیٹی کے 46ویں اجلاس میں اس سال یونیسکو کی جانب سے عالمی میراث کی فہرست میں 25 نئے مقامات کو شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کمیٹی کے ذریعے 2 بڑی حدود میں ترمیم کو باضابطہ شکل دی گئی ہے. ان میں سے جاپان کے ساڈو آئی لینڈ گولڈ مائنز، تھائی لینڈ کے پھو پرابرٹ ہسٹوریکل پارک، جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا لیگیسی سائٹس فار ہیومن رائٹس لبریشن اینڈ ریکنسلائیشن، اٹلی کے ویا ایپیا اور چین کے بیجنگ میں سینٹرل ایکسس سمیت 13 نئے مقامات کو کل شامل کیا گیا ہے. 19 مقامات کو ثقافتی ورثے کی حیثیت سے، 4 کو فطری زمرے کے تحت اور 2 کو مکس زمرے کے تحت شامل کیا گیا ہے. بھارت کے آسام سے موئی ڈیمز کو کل بھارت کے 43ویں عالمی میراث کے مقام کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے. امریکہ کے سابق صدر اور آئندہ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے پر امریکہ کو کوریئرز کی ایک کرپٹو کیپٹل بنانے اور دنیا کا بٹ کوائن سپر پاور بنانے کا عزم کیا ہے. وینزویلا میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے. اپوزیشن پارٹیوں نے متحدہ طور پر ایک واحد امیدوار کو انتخابی میدان میں اتارا ہے، جس کے سبب وینزویلا کی برسر اقتدار یونائیٹڈ سوشلسٹ پارٹی کو شدید چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج گجرات میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس کے علاوہ آج سوراشٹر اور کچھ خطوں، مشرقی راجستھان، کیرالہ، ماہے اور ساحلی کرناٹک میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. یہاں بے حد شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. पेरिस ओलंपिक्स में कल पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की। खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत के मर्दों की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 2-3 गोल से शिकस्त दी, जबकि बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के मुकाबले में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज वेंकी रेड्डी की जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को हराया। पेश है एक रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल बी के अपने पहले मैच में कल न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। पेनल्टी स्ट्रोक में निर्णायक गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने ग्रुप मैच में फ्रांस के लुकास कोर्वी और रोनन लेबर की जोड़ी को हराया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने 5 बार के ओलंपिक विजेता ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को मात दी। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में हरमीत देसाई ने जॉर्डन के जैद अबो यमन को हरा दिया। नौकायन में पुरुष सिंगल्स स्कल्स स्पर्धा में बलराज पवार 4था स्थान लेकर अगले चरण में प्रवेश कर गए हैं। महिलाओं की मुक्केबाजी स्पर्धा में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार वियतनाम की वो ती किम येन को 5-0 से हराकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। आज निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगी। भारतीय खिलाड़ी आज तीरंदाजी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। ओलंपिक में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी धीनिधि देसिंगू आज दोपहर महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क से शक्ति प्रताप सिंह।
भारत ने कल पहले बैन अलाकवामी T20 मैच में मेजबान श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। यह मैच कल रात श्रीलंका के पल्लिकेले बैन अलाकवामी स्टेडियम में खेला गया। इस जीत के साथ भारत को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
नए हेड कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव की क्यादत में खेलते हुए भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2-तरफा T20 सीरीज में फातेहाना आगाज किया। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 213 रन बनाए, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 58 रन की तेज पारी खेली। जवाब में श्रीलंका का टॉप ऑर्डर 14 ओवर तक अच्छे फॉर्म में नजर आया, पर भारत के बॉलरों ने श्रीलंका को 170 रनों पर ऑल आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव को उनकी मैच विनिंग इनिंग्स पर मैच बेहतरीन खिलाड़ी पबरनामे के लिए पल्लिकेले से अहमद मोइन फारूखी।
इस सीरीज का दूसरा T20 बैन अलाकवामी मैच इसी मकाम पर आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। खवातीन एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज से पहर श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला बैन अलाकवामी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम 8वीं मरतबा एशिया कप का खिताब हासिल करने की कोशिश करेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने नीति आयोग की कल हुई मीटिंग की खबर को शह सुर्खी के साथ शाया किया है। इसी इलाज की सराहना करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल किया जा सकता है और इसके लिए तमाम रियासतों की मुश्तरक कोशिश जरूरी है। पार्लियामेंट का बुनियादी किरदार आईन और जमहूरियत की हिफाजत करना है। इस खबर को रोजामर्रा आशी सहारा और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 9 मुंतखब अरकान के लिए वाकफियत प्रोग्राम से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया। रोजामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के एक बयान को पहले सफे पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मजबूत अदालती निजाम तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म की हकीकी बुनियाद है। राजस्थान हाईकोर्ट के क्याम के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़द एक तकरीर से खिताब करते उन्होंने ये बात कही। रोजामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने एक और खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसमें मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि सरकार दहशतगर्दी से मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए नई हिकमत अमली पर काम कर रही है।
आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 9 रियासतों में गवर्नरों की तरक्कदुरी की है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का नया गवर्नर, जबकि संतोष गंगवार को झारखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों के लिए जबरदस्त मांग की वजह से साल 2030 तक मुल्क में स्टील की पैदावार 300 मिलियन टन को पार कर जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 2-3 गोल से शिकस्त दी, जबकि बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के मुकाबले में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।